अब नवीन कारिका के द्वारा भी जो है वही मीमांसक के मत का खंडन चलेगा। साधकांतरम आह, साधकांतर माने अंतर का अर्थ अन्य होता है, तो अन्यत साधकम साधकांतरम, अन्य जो साधक है, ऐसा है ना, साधक और बाधक। बाधक जो होता है वह सिद्धांत का मानने में, सिद्धांत में बाधा पहुंचाता है, और साधक जो होता है वह सिद्धांत को सिद्ध करने में सहायक होता है। तो यहाँ पर व्याकरणों का जो सिद्धांत है उसका साधकांतरम आह, उसका साधक जो है अन्य साधक को बताया जा रहा है। पहले जो चर्चा आ गई वह तो आई, उसके अतिरिक्त और भी जो है साधक तत्व हैं व्याकरणों के सिद्धांत में, वही बता रहे हैं। कारिका है किं कार्यम पचनीयं च इत्यादि दृष्टं ही कृत्स्वपि किंच क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न। संक्षेप में अर्थ बता देता हूँ, आगे ये स्वयं भूषणकार बताएंगे। ताकि प्रश्न होता है कि किं कार्यम माने क्या करना चाहिए, तो जवाब दिया जाता है पचनीयम माने पाक करना चाहिए। इत्यादि दृष्टम ही कृत्स्वपि, इस तरह से कृत्सु अपि माने कृदंत प्रयोगों में भी जो है इस तरह से व्यापार का विवरण जो है प्राप्त होता है। किंच क्रियावाचकतम बिना वाचकताम बिना धातुत्वमेव न, ये सबसे बड़ी बात व्याकरणों की ओर से कही गई है कि अगर आप क्रियावाचक नहीं मानेंगे ना तो गम पच सबको, तो उसकी धातु संज्ञा ही नहीं होगी, क्योंकि मीमांसकों ने तो धातु का अर्थ केवल फल माना है, क्रिया माना नहीं है, क्रिया माने व्यापार माना नहीं है। अगर व्यापार अर्थ नहीं मानेंगे धातु का तो भू आदि वो धातु से धातु संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि भू आदि धातु कहते हैं क्रियावाचिनो भूआदियो धातु संज्ञा सु, फलवाचिनो भूआदियो धातु संज्ञा सु, ऐसा तो नहीं कहता है ना, इस तरह से धातु संज्ञा ही नहीं होगी। और जब धातु संज्ञा नहीं होगी तो हजारों जो काम होते हैं व्याकरण शास्त्रीय धातु संबंधी काम, वो सारे काम नहीं होंगे। तो ये कारिका में बताया गया। अब आगे विवरण स्वयं दे रहे हैं भूषणकार, कहते हैं कि कार्यम, कार्यम प्रयोग कैसे बनता है, तो बताते हैं कार्यम इत्यत्र रिहलोर नियत इति कर्मणि नियत प्रत्ययः। कर्म अर्थ में क्री धातु से नियत प्रत्यय किया जाता है, और उसके लिए सूत्र है रिहलोर नियत। तो कर्म कारक अर्थ में यहाँ पर नियत प्रत्यय हुआ कार्यम। पचनीयम इत्यादो च अनियर, और पचनीयम में पच धातु से अनियर प्रत्यय प्रत्यय हुआ है। यहाँ सूत्र नहीं दिया इन्होंने, तो आप सूत्र जानते ही हैं, तब्यत तब्या नियर है, उसे अनियर प्रत्यय होता है, और वह भी कर्म अर्थ में ही होता है। तो आदिना किम कार्यम पचनीयम च इत्यादि लिखा है ना कारिका में, तो इत्यादि से एक और उदाहरण यहाँ पर बताते हैं क्या, ज्योतिष टोम याजी, ज्योतिष टोम याजी जो है ना, ज्योतिष टोमे न इष्टवान माने ज्योतिष टोम के द्वारा यज्ञ किया, ऐसा जो है ना इसका अर्थ होता है। तो यहाँ ज्योतिष टोम याजी में इत्यादो करने उपपदे, ज्योतिष टोमेन ये जो करण है यह उपपद में रहने पर कर्तरी नीनी ही, कर्ता अर्थ में यहाँ पर नीनी प्रत्यय हुआ है। अब देखिए ये तीन उदाहरण है यहाँ पर, एक कार्यम, एक पचनीयम और एक ज्योतिष टोम याजी। इन तीनों में दो जो है कार्यम और पचनीयम, उसमें कर्म अर्थ में जो है प्रत्यय हुआ है, और ज्योतिष टोम याजी में जो है कर्ता अर्थ में प्रत्यय हुआ है। आप ये जानते हैं कि कारक होने के लिए, कारक बनने के लिए क्रिया का होना जरूरी है, क्योंकि दो लक्षण है कारक का, एक है क्रियाजनकत्वम, एक है क्रियान्वयित्वम। तो दोनों ही लक्षणों को देखें तो क्रिया का होना जरूरी है, क्रिया रहेगी तभी क्रियाजनक कोई होगा, क्रिया रहेगी तभी क्रिया का अन्वयी कोई होगा। तो कारक बनने के लिए क्रिया का वहाँ रहना जरूरी है। अगर कार्यम में हम कर्म में नियत प्रत्यय करते हैं तो कर्म में करने के लिए वहाँ पर कोई न कोई की क्रिया होनी चाहिए, ऐसे ही पचनीयम में कर्म में अनियर प्रत्यय करते हैं तो वहाँ कोई न कोई क्रिया होनी चाहिए, ऐसे ही ज्योतिष टोम याजी में कर्ता अर्थ में हम निनी प्रत्यय करते हैं तो कोई न कोई क्रिया वहाँ होनी चाहिए, तभी उस क्रिया का जनक जो है न कर्ता या कर्म कहलाएगा और उस अर्थ में प्रत्यय किया जाएगा। लेकिन आप क्या हैं, आप तो धातु का अर्थ क्रिया मानते ही नहीं हैं, को जैसे क्री धातु से न्यत प्रत्यय हुआ, पच धातु से अनियर प्रत्यय हुआ, ज्योतिष्टोम याजी में ज्योतिष्टोमेन उपपद यज धातु से निनि प्रत्यय हुआ, तो आपके सिद्धांत से तो यहाँ पर क्रिया है ही नहीं। और जब क्रिया नहीं है तो न कर्ता रहेगा न कर्म रहेगा, और जब कर्ता कर्म नहीं रहेगा तो कर्म अर्थ में कैसे नियत प्रत्यय होगा, कर्ता अर्थ में कैसे निनि प्रत्यय होगा, ये सवाल जो है व्याकरण पूछ रहे हैं। इसी बात को आगे देखिए बताएंगे। एते च मतलब ये जो कर्म अर्थ है और क्रिया कर्ता अर्थ है, ये क्रिया योगम अंतरेण, अंतरेण माने बिना, माने क्रिया के योग के बिना, योग माने संबंध, तो क्रिया से संबंध के बिना असंत है, ये तो असंत होंगे, संत माने रहना, असंत माने नहीं रहना, ये नहीं रहेंगे कर्ता कर्म अर्थ, तो तद वाच्यताम बोधयंती, इसीलिए तद वाच्यताम बोधे माने तत् से पकड़ लीजिए व्यापार को, माने व्यापार जो है यहाँ पर वाच्य होता है किसका, धातु का। कार्यम में क्री धातु का अर्थ होता है व्यापार, पच नियम में पच धातु का वाच्य होता है व्यापार, और ज्योतिष्टोम याजी में जो है यज धातु का अर्थ होता है व्यापार, और ऐसा व्यापार वाच्य होता है इसीलिए वहाँ पर कर्ता कर्म अर्थ रहेगा, तो उस अर्थ में प्रत्यय किया जाएगा। आगे कहते हैं फिर बिना क्रियाम कारकत्व असंभव है ना, क्रिया अर्थ आपको मानना ही मानना पड़ेगा, नहीं तो कारकत्व असंभव होगा, तदवाचक प्रत्ययस्यापि असंभवात्, और जब कारक ही नहीं रहेगा, कर्ता कर्म अर्थ रहेगा ही नहीं, तो उस तदवाचक जो प्रत्यय है न्यत प्रत्यय निनि प्रत्यय ये सब असंभव हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, माने कार्यम पचनीयम ज्योतिष्टोम याजी इस तरह से जितने भी कृदंत प्रयोग हैं वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि क्रिया वहाँ होना जरूरी है इन अर्थों में प्रत्यय होने के लिए, और आप क्रिया जो है ती का अर्थ मानते हैं, यहाँ ती है ही नहीं। नौच, अब ये नौच को भी जो है ना जो लास्ट ऐसा है जहाँ भी नौच से वाक्य की शुरुआत हो ना, तो वहाँ नौच को लेकर के ना वाक्य के लास्ट वाले में जोड़ना है, कि इस वाक्य के लास्ट में क्या है, भात रीतिर युक्ता, तो युक्ता से पहले नौ लगा दीजिए, माने भात रीति ही नौ युक्ता, ऐसा अर्थ होगा। चलिए, तो यहाँ पर मीमांसक लोग फिर तर्क देते हैं अपनी ओर से, कहता कि ऐसा है ना कि कार्यम पचनीयम ज्योतिष्टोम याजी में ये सही है कि ती नहीं है तो क्रिया भी नहीं होगा अर्थ, लेकिन ऐसा कहने गम्यमान क्रिया के आधार पर जो है ना यहाँ पर कर्ता कर्म रह सकता है। ये गम्यमान क्रिया क्या है, तो गम्यमान क्रिया वो होती है जहाँ पर क्रिया का शब्दशः उल्लेख नहीं होता हो लेकिन उसका अर्थ वहाँ पर स्थित हो, माने जिसका अर्थ तो भासता है परंतु शब्द छिपा होता है, ऐसी जो क्रिया है उसको कहते हैं गम्यमान क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया को बताने के लिए भले ही ती नहीं है लेकिन क्रिया अर्थ यहाँ पर भासित होता है, और उस भासित होने वाले क्रिया अर्थ के आधार पर गम्यमान क्रिया आदाय, गम्यमान क्रिया के आधार पर यहाँ पर कारक का योग हो जाएगा, माने कर्ता कर्म अर्थ का संबंध बैठ जाएगा, और उस अर्थ के होने के कारण प्रत्यय हो जाएगा। इति भक्त रीति ही, ऐसा जो कुमारिल भट्ट का कहना है उनकी जो रीति है, इति नौ युक्ता, ये युक्त नहीं है, ये सही नहीं है कि गम्यमान क्रिया के आधार पर कारक मान करके प्रत्यय करने की बात सही नहीं है। क्यों, क्योंकि गम्यमान क्रिया के आधार पर अगर आप करेंगे तो आख्याते पि तथात्वापत्तो, आख्यात जो स्थल है पचति भवति वाला जहाँ पर ती श्रूयमान है, ऐसी जगह पर भी तथात्व तो आपत्ति, वहाँ पर भी जो है ना व्यापार अर्थ क्यों मानना ती का, वहाँ भी गम्यमान क्रिया मान करके जो है ना काम आपको चला लेना चाहिए, तत्रापि भावनाया वाच्यत्व असिध्यापत्ते है, तो वहाँ पर भी ती का जो अर्थ आप भावना मानते हैं पचति भवति में, वह वाच्यत्व असिद्धि होगी वाच्यत्व की, क्योंकि वहाँ पर भी गम्यमान क्रिया के आधार पर ही जो है वहाँ पर भी काम चल जाएगा, कर्ता में कर्म में तिंग प्रत्यय तंग प्रत्यय सब आने लगेंगे। तो इस तरह से इन्होंने इसका खंडन किया कि गम्यमान क्रिया के आधार पर आप कार्यम पच नियम में प्रत्यय नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो पचति भवति में भी गम्यमान क्रिया के आधार पर ही हो जाएगा, आप फिर ती का अर्थ आप क्रिया क्यों मानते हैं, ती का अर्थ व्यापार क्यों मानते हैं। इस पर फिर मीमांसक कहते हैं कि ऐसा है कि पचति भवति और कार्यम पच नियम में एक अंतर है, क्या, पचति भवति में लिंग संख्या के साथ क्रिया का अन्वय नहीं होता है, और कार्यम पचनीयम में जो है लिंग संख्या के साथ क्रिया का अन्वय होता है, तो लिंग संख्या के अन्वय के आधार पर यहाँ पर जो है हम ये कर्तुर वाच्यत्वम आवश्यकम, कर्ता को यहाँ पर वाच्य मानना जो है जरूरी है। अथ पंक्ति देखिए, अथ लिंग संख्या अन्वयानुरोधात, यहाँ पर लिंग और संख्या का अन्वय होता है कृदंत स्थल में। ऐसा है कि क्रिया दो तरह की होती है, सत्व और असत्व। तो सत्व जो क्रिया वाली, सत्व वाली जो क्रिया होती है उसमें लिंग संख्या का अन्वय होता है, और असत्व वाली जो क्रिया होती है उसमें लिंग संख्या का अन्वय नहीं होता है। तो पचति भवति में असत्व वाली क्रिया होती है, और कार्यम पचनीयम सब जो कृदंत है उसमें सत्व वाली क्रिया होती है। तो वही तर्क में कह रहे हैं कि लिंग संख्या का अन्वय होता है, इस अन्वय के अनुरोध से कर्तृवाच्यत्वम आवश्यकम, कृत प्रत्यय का अर्थ कर्ता करना जरूरी है, क्योंकि कृत प्रत्यय जो है न्यत प्रत्यय, निनी प्रत्यय, सबका कर्ता अर्थ, ये निनी का कर्ता अर्थ और न्यत का कर्म अर्थ। तो कर्तुह वाच्यत्व में कर्तुह कर्मणः दोनों समझना चाहिए। तो इस तरह इसको वाच्य मानना जरूरी है, क्योंकि तभी लिंग और संख्या का अन्वय उसमें होगा। तो और जब ये अर्थ मानना जरूरी है कर्ता कर्म अर्थ, तो फिर कर्ता कर्म अर्थ बनने के लिए क्रिया जरूरी है। तो तेन आक्षेपाद भावना प्रत्यय स्यात्, फिर क्रिया का आक्षेप करेंगे, और क्रिया का आक्षेप करने पर जो है भावना प्रत्यय स्यात्, माने भावना प्रत्यय होगा। भावना प्रत्यय मतलब ये जो न्यत प्रत्यय और निनी प्रत्यय सब जो होते हैं अनियर प्रत्यय, यह प्रत्यय हो पाएंगे, क्योंकि हमने दोष दिया था ना कि व्याप क्रिया नहीं रहने के कारण कर्ता कर्म नहीं रहेगा, और कर्ता कर्म नहीं रहने के कारण ये प्रत्यय नहीं हो पाएंगे। उसका इन्होंने जवाब दिया कि चूंकि लिंग संख्या का अन्वय यहाँ पर माना जाता है, इसलिए कर्ता कर्म अर्थ मानना जरूरी है, और कर्ता कर्म अर्थ अगर मानेंगे तो क्रिया का यहाँ पर आक्षेप करके बिना तो ये हो नहीं सकता, तो क्रिया का आक्षेप कर लेंगे, और ऐसा क्रिया का आक्षेप करके फिर हम प्रत्यय की सिद्धि कर लेंगे। तभी तो इसका भी खंडन करते हैं, कहते हैं कि यदि ऐसा आप मानते हैं तभी तो संख्या अन्वय उपपत्तये आख्यातेपि कर्ता वाच्य स्यात्। तो कहा कि आप सेम हो जाएगा ना, जैसे कृदंत स्थल में आपने आक्षेप के आधार पर क्रिया को लाया, आक्षेप से लाया, और लिंग संख्या के अनुरोध से कर्ता कर्म अर्थ माना, तो सेम करिए ना, तिंगंत में भी यही स्थिति होगी, वहां पर भी जो है आक्षेप से क्रिया आ जाएगी, और लिंग संख्या का अन्वय करने के लिए वहां पर भी आपको आख्यात माने तिंग का अर्थ कर्ता मानना पड़ेगा, कर्म मानना पड़ेगा। पक्वान इत्यादो कालकारक अन्वय अनुरोधात भावनाया अपि वाच्यत्वस्य आवश्यकता, और पक्वान में जो है काल माने भूतकाल में जो है अक्तवतु प्रत्यय होता है, और कारक माने कर्ता कारक, तो भूतकाल और कर्ता कारक का अन्वय के अनुरोध से माने अन्वय होता है, इसलिए भावनायापि वाच्यत्वम, फिर भावना को भी स्वीकार करना पड़ेगा, व्यापार अर्थ भी आपको अक्तवतु प्रत्यय का मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ यदि नहीं मानेंगे तो फिर कारक नहीं रहेगा, आ कारक नहीं रहेगा तो फिर उसमें कालक काल का अन्वय कैसे होगा, कारक का अन्वय कैसे होगा। इस तरह से आप आक्षेप के द्वारा क्रिया लाना और लिंग संख्या से अन्वय होता है, इसलिए कर्ता कर्म अर्थ को मान लेना ये सही नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो तिंगंत में भी ऐसा मानना होगा, और पक्वान में भी जो है आपको भावना अर्थ मानना पड़ेगा अक्तवतु प्रत्यय का, तभी जो है काल और कारक का उसमें अन्वय हो बैठ पाएगा। अपिना हेत्वंतर समुच्चया, ये कारिका में कृत्सु अपि, अपि जो कहा था ना, तो अपि जो है ना अधिक हेतु को बताता है, हेतुअंतर को बताता है, माने एक हेतु तो पहले बताया गया किं कार्यम पचनीयम च वाला, और दूसरा हेतु भी बताया जाता है अपि के द्वारा। वह दूसरा हेतु क्या है, हेतुअंतर क्या है, कहते हैं कि तथा ही नखेर भिन्ना नख भिन्ना, इसमें जो है ना नखे जो है करण तृतीयांत है, इसके साथ समास होता है नखेर कर्ति करने कृता भोलम, ये जो सूत्र है इस सूत्र के द्वारा समास होता है। तो नखेर भिन्नः नख भिन्नः हरिना त्रातः हरित्रातः, तो नखेर भिन्ना में नखे जो है करण है, इसका भिन्नः के साथ समास होता है, हरिना ताता में हरि जो है कर्ता है, और उसके साथ त्रातः का समास होता है। तो यहाँ पर भी करण और कर्ता कारक रहने पर समास होता है ऐसा बताया गया, लेकिन आप देखिए इसमें तिंग कहीं नहीं है, न नखेर भिन्ना नख भिन्ना में तिंग है, न हरिना त्राता हरित्राता में तिंग है, तो फिर यहाँ समास नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि समास होने के लिए कर्ता और करण का होना जरूरी है। कति करने कृता भोजन से जो समास करेंगे, और कर्ता करण होने के लिए क्रिया का होना जरूरी है, और क्रिया के जिससे रहती है तिंग वह यहाँ है नहीं, इस तरह से समास यहाँ पर नहीं हो पाएगा। वही कहा कि तथा ही नखेर भिन्ना नख भिन्ना में हरिणा त्रात हरित्रात इत्यादो कति करने कृता भोजन इति समासो न स्यात्, इससे समास नहीं हो पाएगा। पुरुषो राज्ञो भार्या देवदत्तस्य इतिवत् असामर्थ्यात्, क्यों नहीं होगा समास, तो असामर्थ्य होने के कारण। ये असामर्थ्य क्या होता है, सामर्थ्य का अभाव जो है वही होता है असामर्थ्य। सामर्थ्य क्या होता है कि परस्पर संबंध होना जो है उसका नाम है सामर्थ्य, और परस्पर संबंध का न होना जो है वह है असामर्थ्य। तो यहाँ पर कर्त करने कृता बहुलम से जो समास करेंगे इसमें क्या करना चाहिए, हरिणा का त्रातः के साथ संबंध होना चाहिए, नखेह का भिन्नह के साथ संबंध होना चाहिए, और वह संबंध हो नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि कारक का कारक के साथ तो अन्वय होता नहीं है, उसमें मीडियम क्या चाहिए, क्रिया चाहिए, तो क्रिया के अभाव में यहाँ पर संबंध नहीं बैठ पाएगा, सामर्थ्य का अभाव होगा, समास नहीं हो पाएगा। इसका एक उदाहरण यहाँ पर बताए हैं, पुरुषो राज्ञो भार्या देवदत्तस्य, ऐसा है, इन्होंने क्रम बदल दिया है असामर्थ्य दिखाने के लिए। इसका असली क्रम जो है वो ये है, राज्ञः पुरुषः और देवदत्तस्य भार्या। अगर ऐसा कहते हैं राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञः पदार्थ का पुरुषः पदार्थ के का साथ संबंध रहता है, सामर्थ्य रहता है, और देवदत्तस्य भार्या कहते हैं तो देवदत्तस्य का भार्या पदार्थ के साथ संबंध रहता है, माने सामर्थ्य रहता है। अगर इसको उल्टा पुल्टा कर दें, पहले पुरुषः कहें, फिर राज्ञः कहें, फिर भार्या कहें, फिर देवदत्तस्य कहें, तो एक दूसरे के साथ यहाँ पर संबंध नहीं बैठता है, माने सामर्थ्य अभाव रहता है, और सामर्थ्य अभाव के कारण पुरुषो राज्ञो भार्या देवदत्तस्य में समास जैसे नहीं होता है, उसी तरह से नखेर भिन्नह में हरिणा त्रातः में समास नहीं हो पाएगा सामर्थ्य के अभाव के कारण। तो इस तरह से हेत्वंतर इन्होंने बताया। अभी हार मानने वाले नहीं है मीमांसक लोग, अभी और जो है ना तर्क कुतर्क करेंगे, तो उस पाठ को हम अगले पाठ में समझेंगे, आज यहीं रखते हैं।